प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर
एक नगर में एक गांव में दो साधक थे। एक तो लगभग 40 वर्ष से साधना कर रहा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़े बड़े केस, एक गांव के जंगल में, और दूसरा अभी 4 वर्ष से ही साधक बना था, संत बना था, वो भी उसी जंगल के दूसरे कोने में बैठा था। एक देवदूत आया करता और वो देवदूत पहले दोनों से मिलता था, भगवान की चर्चा करता था, बड़ी अच्छी तरह समय व्यतीत हो रहा था, दोनों ही भगवान की महिमा खूब सुनाया करते थे और सुना करते थे देवदूत से। एक दिन भगवान के पास जाकर देवदूत ने कहा कि भगवान, एक नगर में आपके केवल दो भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, आपके ऊपर बिल्कुल समर्पित हैं। भगवान ने कहा, देवदूत, उनमें से एक ही भक्त है, दूसरा तो वैसे ही अपना टाइम पास कर रहा है, वो भक्त नहीं है। अब देवदूत ने सोचा, भगवान गलत तो नहीं कह सकते। फिर देवदूत बोला, जी हाँ, वो होगा जो 40 साल से आपकी साधना कर रहा है। भगवान बोले, नहीं, वो जो 4 वर्ष से लगे है ना, वो है भक्त, वो नहीं है। अब देवदूत असमंजस में पड़ गया, भी वो तो बहुत अच्छे विचारों का आदमी है और भगवान ने शायद समझण में फर्क रह गया। फिर बताया देवदूत ने, जी वो है ना जो इस साइड में रहता है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़े बड़े केस हैं, और लगभग वो तो 60 वर्ष के आसपास है। भगवान बोले, हाँ उसी को कह रहा हूं, वो भगत को नहीं, भगत तो दूसरा है। अब देवदूत के ना गला उतरे या बात, भगवान समझ गए, भाई देवदूत तेरे जची नहीं या बात, अग्नि भगवान आपकी बात ना यकीन हो, लेकिन मारी बुद्धि छोटी है, मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा। परमात्मा बोले, न्यू कर तू, आज उनको कुछ देर से जाना, उसका फिक्स टाइम था जाने का, आज तू 2-3 घंटे देर से जाना और देरी का कारण ये बताना, फिर उनकी क्या प्रतिक्रिया हो फिर मुझे बताना। अब देवदूत 3-4 घंटे देर से गया। पहले गया वो उस 40 साल वाले के पास, उसका तो पक्का यकीन था कि वो तो भगता पड़ा है, साधु है, पड़ा है, बहुत गजब का साधु है। अब वहां गया तो उस भक्त ने 40 साल से साधना कर रहा था, उसने पूछा, देवदूत आपकी बहुत देर से इंतजार कर रहा था, आज क्या कारण होगी, देरी कैसे होगी। देवदूत ने कहा कि महात्मा, आज भगवान ने एक बहुत बड़ा जो ना करिश्मा कर दिया। अब क्या कर दिया कि परमात्मा ने हाथी को और सुई के नाके में निकाल दिया। अब वो कहता, वो बड़ोदे नो कहे, अरे देवदूत ऐसी बात कर दो किसी के यकीन हो, क्यों सफेद झूठ बोल रहा है, ये कभी हो सकता है? सुई के नाके में हाथ ही निकल गया। अब वो देवदूत समझ गया, भाई तो जमा नरा डांगर है, काम करता है। ठीक कहते भगवान, युद्ध इसका नहीं, यकीन माड़ा सभी परमात्मा का, उठ कर चल पड़ा। अब उसको यकीन था तो वो तो और भी घटिया बात करेगा, जो छोटा सा 4 साल तो भक्ति कर रहा है। अब वहां पहुंचा, उसने भी यही कारण पूछा कि क्या बात है देवदूत, बहुत देर से आए। उसने कारण बताया कि आज बहुत बड़ा क्रिसमा हो गया, और वो क्रिसमा भगवान ने 1 बजे करना था, वो देख कर मैं आया हूं, इस करके देरी होगी। भक्त भक्त ने पूछा, देवदूत ऐसा क्या क्रिसमा कर दिया प्रभु ने, हमें भी बताइए। वही बताई कि परमात्मा ने हाथी को और सुई की नोक में गए निकाल दिया। भाई कमाल कर दिया। अब वो भक्त कहता है, अरे भगवान निकाल दे सारी पृथ्वी को, तू हाथी में अचंबा करता है, और सीने से लगा लिया उस देवदूत ने उस 4 साल के भक्त को। अब भगवान ठीक कहता हो तो नरा डांगर है दो, अरे परमात्मा पे विश्वास नहीं और ड्रामा कर रहा भक्ति का। तो पुण्यात्मा सतगुरु जो चावे सो कर ही, और 14 कोट दूत जम डर ही, ऊट भूत जम त्रास निवारे, और वो चित्रगुप्त के कागज पाड़े। परमात्मा सब कुछ कर सकता है। तो पुण्यात्मा हम इस तरह के अज्ञानी महर्षियों के द्वारा समाज को इतना भ्रमित कर दिया कि परमात्मा की डेफिनेशन बदल दिए, और ये पक्के दूत हैं जो उधर से तो आस्तिक बताते हैं भगवान की भक्ति करनी चाहिए, फिर कहते हैं भगवान कुछ नहीं कर सकता परमात्मा की भक्ति से, कहते हैं पाप नाश नहीं होते, ये मैं ऋषिया की वचन होया करें। और एक नहीं कुछ, वो तो परमात्मा कहते हैं कबीर, ये माया अटपटी सब घटा नड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। पुण्यात्मा परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है, वो कबीर देव है। परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी की महिमा का प्रसंग चल रहा है। परमेश्वर कबीर देव जी अपनी महिमा, अपनी लीला, अपनी महिमा का वर्णन स्वयं ही वो लीला करके करने आते हैं, और पूरी भक्त समाज को, पूरे भक्त समाज को वो तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। पवित्र वेद यही गवाही देते हैं। एक समय की बात है कि ये गोरखनाथ जी, कबीर गोरखनाथ जी बनारस में आगे काशी में। पुण्यात्मा गोरखनाथ जी वैसे तो बहुत पहले हुए हैं, लेकिन ये संत साधु जो होते हैं ये पितर रूप में हो जाते हैं। ये पूर्व जन्म की भक्ति शक्ति से कुछ कमाई इनकी शेष रह जाती है, ये पितर रूप में हो जाते हैं, और उस पितर लोक से आकर ये कभी भी प्रकट हो जाते हैं। जैसे राजा परीक्षित को जब कथा सुनानी थी भागवत की, पृथ्वी के सभी ऋषियों ने हाथ खड़ा कर दिया था कि हमारे बस की बात नहीं, तो स्वर्ग लोक से सुखदेव ऋषि आए थे विमान में बैठ कर, और उन्होंने वो कथा सुनाई थी। ऐसे ये ऊपर के लोकों में एक अलग स्थान है, स्वर्ग में ही एक पितर स्थान भी है। तो गोरखनाथ जी को पता चला कि रामानंद नाम के एक महर्षि ने वैष्णव पंथ का काफी प्रचार कर दिया, और ये गोरखनाथ जी भगवान शंकर के पुजारी थे, नाथ थे। इनको ये पता चला कि नाथ परंपरा का ह्रास हो रहा है, तो वो साथ एक नाथ बनकर गुप्त रूप में, नहीं पता ये किसी को नहीं मालूम था गोरखनाथ है, और वहां आकर के उसने चैलेंज कर दिया रामानंद जी को कि मेरे साथ तू गोष्ठी कर। रामानंद जी को पता था कि नाथों के पास सिद्धि होती है और जनता सिद्धि को पसंद करती है, वो कोई सिद्धि चमत्कार दिखा देगा, सब उसको विजय करार दे देंगे और ताली पीट देंगे, मैं हार जाऊंगा। और शर्त रखी गई थी कि जो हार जाएगा वो जीतने वाले का शिष्य बनेगा, सारे अनुयायी भी उसके शिष्य बनेंगे। इस बात से रामानंद जी घबरा गए। कबीर परमेश्वर जी उसमें 10-12 वर्ष की आयु लीला में दिखा रहे थे, तब परमेश्वर ने प्रार्थना की, गुरुदेव हार जीत तो होती ही रहती है, हम आपकी आज्ञा हो तो चलते हैं। अब रामानंद जी को पता था जब भगवान ने कह दिया फिर किसी हार किसी जीत, अब चलो। अब उस दिन कबीर साहब ने जैसे वैष्णो साधु होते हैं उसी तरह की वेशभूषा बना रखी, हाथ में लोटा करमंडल ले रखा और ऐसे ही तिलक लगा रखा, फावड़ी ले रहे ऐसे साथ में। अब वहां पहुंच गए, रामानंद जी को आसन दिया, कबीर जी उनके नीचे चरणों में एक सुयोग्य शिष्य की तरह विराजमान हो गए। नाथ जी ने क्या किया, नाथ जी सामने अलग से आसन पर बैठ गए गोरखनाथ जी, रामानंद जी अलग आसन पर, और कबीर जी नीचे बैठ गए उनके चरणों में अपने गुरुदेव के। हमें एक एग्जाम्पल देकर गए परमात्मा कि जो परम संत आवे उनके साथ आपने कैसे व्यवहार करना है, जैसे खुद करके दिखाते हैं वो एक लीला। तो उधर गोरखनाथ जी ने रामानंद जी से कहा कि चर्चा कर मेरे तय प्रसन्न कर। तब कबीर परमेश्वर ने कहा कि गोरखनाथ जी पहले इनके चेले से निमट ले तू, फिर गुरु जी से बात करना। अब गोरखनाथ क्या कहता है, अरे छोटे से बालक तू कद से साधु बन गया, छोटा सा बालक क्या उम्र है तेरी, और तू गोष्ठी करेगा, अरे वाह भोले बच्चा। अब परमात्मा बोले, नाथ जी सुन ले मेरी उम्र, सुन ले मेरी, मैं कितनी उम्र है मेरी। अपनात्मा गोरखनाथ जी कहते हैं, कब से भय बैरागी यानी वैष्णो कब से हो गए तुम, कब से भय बैरागी कबीर जी, कब से भय बैरागी। अब परमात्मा कहते हैं, नाथ जी जब से भय बैरागी मेरी आद अंत सुध लगी, धरती नहीं जबकि टोपी, दीन ब्रह्मा नहीं जद का टीका, शिव शंकर से योगी ना थे जद का झोड़ी सिक्का। अब परमात्मा कहते हैं, तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म भी ना हुआ था, मैं उस समय का बैरागी हूं। अब नाथ जी ने सोचा, देख छोटा सा बालक और कैसी ऊंची बात करता है, द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम दंडा, सतयुग मेरी फिर दुहाई और कलयुग फिरो नौखंडा, गुरु के वचन साध की संगत अजर अमर घर पावे, कह कबीर सुनो हो गोरख मैं सबको तत्व लखावे, गुरु के वचन साध की संगत अजर अमर घर पाया, कह कबीर सुनो हो गोरख हम सबको तत्व लखाया। अब गोरखनाथ ने सोची, नू कहे मैं तेरे ब्रह्मा विष्णु में इसका, क्योंकि शिव के उपासक है नाथ जी, तमो गुणी शिव के। तो परमात्मा की ये बात सुनकर गोरखनाथ का खटक लाग गई, अब देख छोटा सा बालक बकवास कर रहा, नू कह ये टोंट कस रहा है मेरे ऊपर। अब क्या बताते हैं परमात्मा, जय कोई बूझे बावरा, क्या है उम्र हमारी, असंख्य योग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी, कोट निरंजन हो गए पर लोक सिधारी। ओ परमात्मा कहते हैं, करोड़ निरंजन ज्योत निरंजन काल मर लिए, ये करा कितने बार मृत्यु हो ली इसकी, हम तो सदा महबूब हैं ये सृष्टि बेचारी, अरबों तो ब्रह्मा गए 49 करोड़ कन्हैया, ये 7 करोड़ तेरे संभूह मर लिए, मेरी एक नहीं पलैया। अब परमात्मा कहे तेरे अरबों तक गर्मा मर गए और 49 करोड़ कन्हैया और 7 करोड़ तेरे संभू मर लिए, मेरी एक नहीं पलैया। कोटिक नारद हो गए ये मोहम्मद से चारी, देवताओं की गिनती नहीं कहां ए सृष्टि बिचारी। नहीं बूढ़ा ना बालक ना कोई भाट भिखारी, कहे कबीर सुनो हो गोरख या सुन ले उम्र हमारी। अपनात्माओं, परमात्मा ने 600 साल पहले कहा था तेरे करोड़ों ब्रह्मा मर लिए और तेरा कितने निरंजन मर लिए और मेरी तो एक पल भी आयु अक्षीण नहीं हुई है, ये पूर्ण परमात्मा है। यहां एक समस्या आती है कि आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, और उस समय ये शब्द कोई बोल दे तो उसका जबान खींच दे ये नकली गुरु। ऐसे समय परमात्मा ने ये डोल के डंके पर ये ज्ञान कहा था, आज वो सच्चा सिद्ध हो गया। देखिए देवी भागवत महापुराण में या गीता प्रेस गौरव से प्रकाशित है, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद उन कार्यालय कोलकाता का संस्थान 123 पृष्ठ पर। ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी में लिखा है कि ये नाशवान है 123 पृष्ठ पर और तीसरा सकंद देखिएगा। भगवान विष्णु जी अपनी मां दुर्गा की महिमा सुनाते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सब तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मन जन्म त्रोभाव मन मृत्यु हुआ करता है, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य जगत जननी हो, प्रकृति हो, सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हें से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शंकर, तो हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपने आत्माओं 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए से, एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, दुर्गा इनकी मां नंबर 2, तीसरा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, चौथा ये हो गया कि ये केवल जैसा कर्म करोगे उतना ही फल दे सकता, ये कोई परिवर्तन आपके भाग्य में नहीं कर सकते। अब गोरखनाथ ने सोचा अकियो तो भाई ना बने बात घनी ऊंची ऊंची बात करता है, तो फिर उसने एक त्रिशूल के ऊपर जाकर आसन लगा लिया और कहा यदि तूने मेरे से चर्चा करनी है तो मेरे बराबर आकर बैठो, समांतर आओ मेरे। तो परमात्मा बोले, नाथ जी ये तो जादूगरों के काम है, भक्तों संतों के काम थोड़े होते हैं, चर्चा कर गोष्ठी की बात हुई थी, कहने लगा तुम्हारे पास कुछ है नहीं, देखो लोगो अब इनके पास कुछ है नहीं, अब देखो ये मेरे बराबर में आकर बैठे तो मैं मानू फिर चर्चा करूंगा। एक दो बार भगवान ने कहा पर ये नहीं माने तमोगुण उपासक। अब परमात्मा क्या करते थे, छोटी सी उम्र में ही कपड़ा बुनन का कार्य करने लगे थे, जैसे ये माताएं कुकड़ी वो चरखे पर काट के ना एक रील बना दिया करती, इसी मोटी बीच तो मोटी आगे पाचक पतली, हमने खूब देख रखी है, हमारी दादी काकी ताई माँ खूब काट्या करती, और वो इतनी मोटी होती थी बीच तो अच्छी मोटी आगे पाछ पतली होती थी। परमात्मा ने बेरा था इसकी ये कहां तक बकवाद करा, जेब में डाल रखी थी वह निकाल के जेब में तो वह पूरी धागे की रील व कच्चे धागे की रील कुकड़ी बोले हमारे क्षेत्र में, उसका एक धागे का एंड पकड़ दिया और परमात्मा ने ऊपर को फेंक दी, वह ऐसे अनबंडल होगी, उदड़गी और सीधा धागा स्ट्रेट खड़ा हो गया। मालिक की शक्ति से सीधा धागा लगभग 150 फुट ऊंचा, इससे भी ज्यादा दे सको, स्ट्रेट खड़ा हो गया धागा भगवान की कृपा से, शक्ति से। और कबीर जी वहां से उठे, आसन बदन लगाए लगाए ऐसे आकाश मुड़ गए और वहां 150 फुट 200 फुट ऊंचे जाकर वहां विराजमान हो गए, ऊपर ले एंड पे, तो उस धागे के ऊपर ले एंड पे, ऊपर के छोर पे, और कहा नाथ जी आ जाए मेरे बराबर बैठ, यहां बात करेंगे। अपनात्मा ऐसी बात नहीं थी कि नाथ जी ना उड़ सकते थे, क्योंकि एक सीधी आकाश से उड़ जाई, एक सीधी जल पैर डालाई, लेकिन इन सिद्धियों से बात नहीं बनती है। अब जैसे ये घड़ी है, ये लोहे की इसकी नीडल बनी हुई है, ये सुई बनी हुई है, ये चल रही है, मैकेनिक ने सिद्धि कर दी, ये चल रही है, और इसके सामने चुंबक आ जा, जाम हो जाएगी यहीं की, ये सथिर हो जाएगी, ये नहीं चल सकती फिर। तो पूर्ण परमात्मा ने अपनी कृपा से उसकी वह ऑफ कर दी, वह सिद्धि फ्यूज कर दी। अब नाथ जी ने थोड़ा सा उकसा, उकसकर नीचा कपड़ा ने गद दे, अब वो जान गया भाई, वो जान गया इस बात को, क्योंकि उनको पता होता है कि वो आम व्यक्ति नहीं, क्योंकि गोरखनाथ वो सिद्ध जो एक छोटी सी पहाड़ी थी उसको सोने में परिवर्तित कर दिया था, आज टकरा गया। वो कहता ना एक भगत, आखिर मैं ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया, ऊंट की बहुत ऊंचाई होती है, जब पहाड़ के नीचे खड़ा हो जाओ उड्डे दिखे रहा माखी है, चोटी मत देखे थे। तो उसने वो जान गया कि ये तो आम व्यक्ति नहीं है, ना गोरखनाथ के सामने कोई सिद्धि में टिकनिया नहीं था। तब उसने करबद्ध प्रार्थना की कि हे भगवान कबीर जी एक बार नीचे आओ, अब मैं आपसे चर्चा करूंगा। जान गया कि तो कोई और आम व्यक्ति नहीं है, गोरखनाथ के सामने पूरी पृथ्वी पर कोई सिद्धि में टिकने वाला नहीं था। परमात्मा आगे कहां बोल आ गया सेंटर में दिमाग इसका। तब काफी देर चर्चा की, अब गोरखनाथ जी कहने लगे मैं एक परीक्षा और लूंगा फिर तुझे भगवान मान लूंगा, अब चलवा भी काट ले कसर, वो भी निकाल अपनी कसर कि गंगा पर चलो, अब चलो। दोनों आगे देखनी और भी बहुत पीछे पीछे थे। अब गोरखनाथ जी कहने लगे मैं इस दरिया में छुपूंगा और मुझे ढूंढ देना। गोरखनाथ जी ने छलांग लगाई दरिया में, गंगा में, और मछली रूप धारण कर लिया। परमात्मा ने साथ की साथ छलांग लगाई और पकड़ कर वह मछली और बाहर दर्दी गोरखनाथ बना के टेक दिया किनारे पर, अकाड़े बैठ नाथ पैर पकड़ दिए, अग भगवान आप कौन हो, आप कौन हो, कहां से आए हो। परमात्मा बोले बैठ ही बताता हूं मैं कहां से आया हूं, कौन हूं। अवगत से ही चल आया, ओए होए, ये चारों वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से अपने तीसरे धाम में रहता है, रित धाम में सतलोक में, और वहां से चल कर गति करके यहां आता है। किस उद्देश्य से? तत्व ज्ञान समझाने के लिए। अवगत से ही चल आया, कोई मेरा भेद मर्म ना पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलहाए न पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलहाए न पाया, मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, दासी मीन पत्नी, मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हाए का सुत आण कहाया, यो जगत करे मेरी आसी। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरा, मैं जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहेब का ओहे नाम हमारा। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरे, ओए होए, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में सैपरि आगात शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम कवि अपाप विदम कवीर मनीषी परिभू स्वयंभू व्यवधाता शास्त्री भय समाभ है। अब क्या कहते हैं, मेरा शरीर आप जैसा पांच तत्वों का नहीं है। सामने बैठे भगवान परमात्मा विदेही है, विदेही माने हमारे जैसी काया नहीं है, काया मीन दे अकायम, आप जैसी काया वाला नहीं है। वो पांच तत्व का धड़ नहीं मेरा, मैं जानो ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहेब का ओहे नाम हमारा। वेदों में जो कबीर देव है ओहे नाम है मेरा, सत्य नाम वो ही कबीर नाम है मेरा। अधर दीप सतलोक में अधर द्वीप, ओहो तीसरे मुक्ति धाम में, अगर दीप गगन गुफा में ता निज वस्तु सारा, तेरा ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन भी धरता ध्यान हमारा। आड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता मैं हूं कबीर अविनाशी। अब परमात्मा ने 600 वर्ष पहले, 550 वर्ष पहले ये वाणी बोली थी कि मैं पूर्ण परमात्मा हूं, तारण तरण अभय पद दाता। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पदमल पदे समान, चल हंसा उस लोक पठाऊं आद अमर अस्थाना। चर मुक्ति झा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर सब मिले राम अविनाशी। ये कहते हैं कबीर परमात्मा कहते हैं, हाड चाम लहू ना मेरे, मेरा शरीर तुम्हारे जैसी नाड़ियों का नहीं है, और कोई जाने सतनाम उपासी, यानी सतनाम उसी को प्राप्त हुआ जो मालिक से परिचित तो उस समय में, और तारण तरण अभय पद दाता मैं हूं कबीर अविनाशी। अब कबीर परमात्मा जी ने नाथ जी को बहुत कुछ समझाया था कि जंतर मंत्र जोग निभाई, काल चक्र जमजोरा खाई। अब गोरखनाथ कहता है कि तुम्हारा वचन मुझे लग गया कड़वा, और परमात्मा कहते हैं कड़वा लगे सो मीठा होई, अमरी बात पतीजे जोई। पुनात्मा आज से 550 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं वही लीला किया ही करते हैं, वो जब आते हैं। अब आपको थोड़ा सा रेफरेंस फिर देना पड़ेगा इन वेदों का, क्योंकि जब तक हम सदग्रंथों में परमात्मा की पहचान नहीं पावांगे हम भक्ति नहीं कर सकते। ये काल के दूत हमें किसी भी पॉइंट पर डगमग कर देंगे, और ये अनमोल खजाना हमें परमात्मा ने दिया है हमारे को, और दास चाहता है कि समय समय पर आपके ऊपर इसकी वर्षा कर दो, क्योंकि ये सत्यनारायण कथा है। अविनाशी सत्यनारायण माने अविनाशी परमात्मा की कथा है। और पुण्यात्मा ये एक सत्संग जो है, ये 3 दिन का सत्संग, इसमें जो है प्रत्येक सत्संग में जैसे सुबह और शाम में कुछ एक भक्त तो वही होते हैं, और बहुत से श्रद्धालु परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, क्योंकि एक घर में 4-5 सदस्य नाम ले रखा है, 2 किसी दिन सत्संग सुन जाते हैं रात का या सुबह का, कोई किसी दिन आता है कोई किसी दिन आता है, कुछ अच्छे सौभाग्यशाली हैं वो सारे ही आ जाते हैं, लेकिन दास चाहता है कि सभी कोई ज्ञान से परिचित करा दूं। और भगवान की महिमा से ये परिचित हो जावे। वो परमात्मा, अब भगवान ने कहा कि अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद बरम ना पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, और जुल्हाए का सुत आण कहा, जगत करे मेरी आसी। ओए होए अपुनात्मा, परमात्मा को पहचान लेना कठिन है। परमात्मा का की प्राप्ति, मोक्ष कराना बहुत आसान है। अब हमें जब दृढ़ विश्वास आपको हो जाएगा कबीर इज गॉड और वास्तव है ही भगवान, केवल एक ही परमात्मा है, बाकी वो भगवान नहीं है। अब यहां भगवान की डेफिनेशन बताऊं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष बताए हैं, तीन भगवान, तीन प्रभु स्वामी, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष। यह सर्वपुरुष तो है, ये ज्योत निरंजन काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जिसको श्राप लगा हुआ 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के नित खाने का और 1,25,00,000 25% एक्स्ट्रा उत्पन्न करने का। इसने अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त करा दिया, जिस कारण से हमारे ऊपर उनका एक प्रभाव रहता विशेष। रजोगुण प्रभाव से हम संतान उत्पत्ति करते हैं, संसारिक सुविधाओं की हम ज्यादा चाह करते हैं, इच्छा करते हैं। सतीति हमारे एक दूसरे में मोह ममता, श्री विष्णु जी के गुण से हम प्रभावित रहते हैं, और तमोगुण शंकर जी के स्वभाव के गुण से हम एकदम बाप बेटे का झगड़ा, सासू बहू का झगड़ा है, एक मिनट में पता नहीं के उद्मसूत उतरवा देंगे। ये जीव के बस का नहीं है। तो इस प्रकार परमात्मा, ये सर्वपुरुष, ये काल है, इसने अपने खाने के लिए ये सब व्यवस्था करवा रखी है। और अक्षर पुरुष, ये सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है, वो भी नाशवान है, और उसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी जन्म और मृत्यु के अंदर ही, और ये दोनों के दोनों पुरुष भी, प्रभु भी जन्म मृत्यु में है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते हैं। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, इन दोनों से न्यारा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्व ब्रह्म के विषय में बताया है कि उसके बारे में जिसको ज्ञान हो गया, फिर वो यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, वो केवल जरा मरण से मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करता है। वो किम तत् ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, गीता ज्ञान दाता ने कहा 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि परम अक्षर ब्रह्म है। एक सर्वपुरुष, सर्वपुरुष कहो चाहे सर्वब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, और ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष, तीन ब्रह्म बताए, सर्वपुरुष अक्षर पुरुष, ये दोनों नाशवान, इनकी ये भी नाशवान के अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान, जीवात्मा नहीं मरती। 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के में उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। अब कितने कोड वर्ड हैं इस पवित्र सदग्रंथ में श्रीमद् भगवत गीता जी में। उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो सही असली भगवान वास्तविक परमात्मा तो इन दोनों से न्यारा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और परमात्मा इति उदाहरते, परमात्मा का अर्थ है श्रेष्ठ आत्मा। श्रेष्ठ आत्मा क्या वो थोड़ी होती है जो आप देखो किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की टांग कट गई, किसी की आंख फूट गई, कोई परिवार का परिवार नाश हो गया, ये परमात्मा के काम है, ये श्रेष्ठ आत्मा के काम है नहीं। कहते वो परमात्मा कहलाता है, और ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवेश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है वो अविनाशी परमात्मा भगवान है। अब भगवान परमात्मा मीन भगवान, भगवान मीन जो सुख दे दुख ना दे, केवल अच्छे पदार्थ अच्छी सुविधा हमें प्रदान करे, उसका नाम भगवान। इन नकलियों को भी प्रभु हम भगवान कहने लगे, परमात्मा कहने लगे। अब क्या बताते हैं, मूला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई, एक न करता दो न करता नौ ठहराए भाई, दसवां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। ये अरहट का कुआ लोई यागल बंजा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हट डोर बंधे कई बारा, ये चतुर्भुजी भगवान कहावे हर हट डोर बंधे सब आवे, ये कोटिक करता फिरता देखा हर हट डोर कहूं सुन लेखा। अब परमात्मा बताते हैं ये त्रिगर्मा विष्णु महेश्वर पता नहीं कितनी बार जन्म मरण के चक्कर के रहट के चक्कर में बंधे हुए हैं। अब परमात्मा किसे कहते हैं, ओए ओए। अब ये भी भगवान को आवे हैं, इनको भी हम परमात्मा कहते हैं। जैसे परमेश्वर कबीर देव जी ने बताया अपनी प्यारी आत्मा जिसको आकर वो मिलते हैं अच्छी आत्मा को अच्छे पुरुष को, धर्मदास जी से कहा कि धर्मदास अब तुझे परमात्मा की डेफिनेशन बताता हूं और काल की डेफिनेशन बताता हूं। अब जैसे कसाई बकरे पाला करता है अपने उन बकरे बकरियों के लिए वो बहुत सुविधा करता है, उनके लिए एक झुग्गी झोंपड़ी भी बनाता है, छान बनाता है लंबा चौड़ी और चारों तरफ उसकी बाड़ लगाता है, कोई हिंसक पशु इन खाना जा मार ना दे, उनके लिए पानी की व्यवस्था जल की व्यवस्था कराता है, चरागाह की व्यवस्था कराता है और उनको चरा के लाता है। उधर से वो बकरे ये सोचते हैं कि देख हमारा मालिक हमारा स्वामी कितना नेक आदमी है, हमारी कितनी देखभाल करता है, हमारे लिए कितनी व्यवस्था कर रखी है। ये पशु पक्षी भी समझते हैं, वो उनकी बुद्धि इतनी है पशुओं की कि ये हमें चारा चराता है, हमारे लिए जल की व्यवस्था कर रखी है। और जब वो कसाई उनके उस जाता है झोपड़ी में, उस बकरियों को बाड़ा बोलते थे पहले, उसको चारों तरफ से बाड़ के अंदर रखा जाता था, तो कसाई तो जाता था ये देखने के कौन से में कितना मांस हो गया, नो हाथ ला के देखे, और वो बकरे ने सोचे ये हमारा स्वामी हमसे कितना प्यार कर रहा है, वो उसको चाटते हैं प्यार करते हैं, और वो ये देख कह कि लोका हो गए हो कितना मांस हो गया कितने का बिकेगा। और फिर जब आ जा ऊपर आदेश उसको कहीं से कि पांच बकरे चाहिए, वो ना देखता किसका बेटा किसकी बेटी, लाठी लेके मोटे मोटे छांट ले जाएगा नो चल भाई, किसी का बेटा मरो किसी की बेटी मरो चाहे एक के ही दोनों मरो, उसने तो अपना उद्देश्य पूरा करना है। अपुणात्मा ये सती थी हमारी बताई परमेश्वर ने कि तुम ऐसे पाल रखे उस काल ने, 1,00,000 रोज खाओगा, और वो बकरे आपस में वो बच्चे उत्पन्न करते हैं, वो व्यवस्था है इस रजोगुण की, और फिर उनमें ममता है, कोई बकरा उनके बच्चों को दूसरा बकरी या बकरा थोड़ा सा सींग ला दे तो दोनों उसे लड़ने जाते हैं और उसको मार मार कर दूर पटकाते हैं कि मेरे बच्चों को कैसे तूने ऐसे मारा। और वही व्यक्ति आप जी और हमारी है जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होता। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे कबीर परमेश्वर बताते हैं कि तुम जिसको भगवान मानते भगवान नहीं, तुमने दिखा भगवान जैसा है, जैसे आप देख रहे हो कितनी सुंदर हवा चले, कितने अच्छे ये पदार्थ बना रखे हैं, क्या जूस सेब संतरे गेहूं चने ज्वार बाजरे हैं, केले सेब संतरे, और कितने अच्छे नीचे से शीतल जल मीठा जल, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा। अब इस सारी व्यवस्था को देखकर तो ऐसा लगता है भगवान हमारे लिए बहुत सुविधा प्रदान कर रहा है। देख परमात्मा ने किसी अच्छे सूर्य चांद बना रखे, समय पर सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य सब व्यवस्था कर रखी, और फिर हम भूल जाते हैं कि अब एक्सीडेंट में देख लियो अखबार में डेली समाचार पत्रों में कि तो दो मर गए, कि तो कट्ठे पांच मर गए, कहीं बीस बीस मर गए, एक परिवार के पांच पांच चार चार मर जाते हैं। एक ही गांव के एक बार कहते हैं 30 आदमी 25 आदमी मर गए थे, कावड़ लेने जा रहे थे अपुणात्माओं। फिर हम बोल जाते हैं कि यो भगवान की तो अजब या दुर्गति कर रखी। कहते हैं उत्तम पुरुष तो अन्य, वो परमेश्वर तो श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है, परमात्मा इति उधारते है जो भगवान कहा जाता है, और वही यह लोक तर्य आविश्य विवर्ती अवेश्वर है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा। अपुणात्मा ये काल कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और ये क्या लीला करता है? इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। ये किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है तो उस ऋषि ने इसको विष्णु मान के काल को और महाविष्णु नाम दे दिया। विष्णु पुराण में यह स्टार्ट जो है काल विष्णु, काल रूपी विष्णु से प्रारंभ है इसकी महिमा। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, ये श्री विष्णु पुराण है, अब ये कहां से प्रकाशित है, कौन इसका संपादक है? मुनिलाल गुप्त अनुवादक है, मुनिलाल गुप्त, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। देखिएगा इसका अपने आत्मा, हमने अपने सदग्रंथों को समझना है। अध्याय नंबर दो श्री विष्णु पुराण 4 पृष्ठ पर नीचे देखो। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। ये काल न परब्रह्म कहे, विष्णु काल में परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, यानी फर्स्ट इंप्रेशन तो ऐसा दिखा दस ये भगवान है, और फिर क्या लिखा है, काल उसका परम रूप है, असली रूप तो काल है। यहां देखो 5 पृष्ठ पर, हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान यानी प्रकृति के साम्य अवस्था में सचित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक सचित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप प्रवर्त होता है। ये यहां विष्णु इस काल को कहते हैं, काल विष्णु, ये सतोगुण विष्णु नहीं, इसका पिता ही विष्णु, इसके रूप में इसके बारे में कहा ये काल है। पुणात्मा श्रीमद भगवत गीता का ज्ञान इस काल ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके दिया। कैसे दिया? कि श्री कृष्ण जी पहले मना कर रहे थे कि युद्ध नहीं करना, बहुत हानि बताई युद्ध की दोनों को, कौरों को भी पांडवों को भी, लेकिन काल ने यो जुल्म करवाना था। श्री कृष्ण जी ने यहां तक कह दिया था कि मैं युद्ध में हथियार भी नहीं उठाऊंगा। श्री कृष्ण जी ये सोच रहे थे कि शायद मेरे मना करने से ये युद्ध टल जाए, पांडव नाट जाए, मना करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, युद्ध भी काल ने करवाया। अब अर्जुन वहां जाकर मना करता है कि भगवान मैं नहीं लड़ू, किसने मारू, ये चाचेताओं के भाई भतीजे बताइए, कल हम इकट्ठे खाते पीते थे, अब किसने मारू, हाथ नहीं उठे। तब इस काल आ गया श्री कृष्ण में ना, श्री कृष्ण तो कह देता चल भाई, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो आप रण छोड़ कर भाग गए थे इस जुलम को टालने के लिए, जब काल्यवन ने मथुरा पर चढ़ाई की थी और मुचकंद की गुफा में जाकर चले गए थे और मुचकंद के ऊपर अपना कपड़ा डाल दिया था। काल्यवन ने मुचकंद को कृष्ण मानकर उसकी टांग मरोड़ दी कि खड़ा हो तो छुप गया, और मुचकंद एक ऐसा राजा था, उसमें सिद्धि थी कि 6 महीने झगड़ा करता था, लड़ा करता, लड़ाई करता था, 6 महीने वो सोया करता था, और सोते समय उसको कोई कच्ची नींद उठा दे, अधूरी निंद्रा से जगा दे, उसकी आंखों से अग्निबाण छूटते थे, उनसे वो काल्यवन मारा गया। श्री कृष्ण जी अक्षत्रिय होते हुए और युद्ध छोड़कर भाग गए कि ऐसा जुलूम से अच्छा तो इसको उससे मरवा दूं, बढ़िया है, तो श्री कृष्ण उस दिन भी कह देते कि अर्जुन चल ठीक है, क्या रखा है, चल वहां द्वारका में टाइम पास कर लियो मेरे पास। लेकिन काल प्रवेश कर गया और फिर लग गया उसको समझाने, तेरा क्या जाता है, तू क्या लेकर आया था है? और तू नियमित कारण बन जा, मैंने मार रखे हैं। और अर्जुन टाल मटोड़ करे, फिर ज्ञान पर चर्चा चला दी अर्जुन ने, शायद ये घड़ी टल जा। लेकिन काल ने आखिर में देखा कि यो तो बात नहीं मान रहा है, अपना विकराल रूप दिखाया। फिर अर्जुन डर गया, एक बार दिखा दिया तो मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, कांपा खड़ा खड़ा ये अर्जुन के सहयोधा हो। हाथ जोड़ कहने बोला, भगवान जो तुम कहोगे वो ये कर लूंगा, अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जाओ। वो श्री विष्णु मान रहा था कृष्ण। अब देखो वो कैसे प्रवेश होता है, यही विष्णु प्राण प्रमाण देगी, ऐसे छलबल करता है ये विष्णु प्राण, वही है। गीता प्रेस गौरपुर से प्रकाशित है, चतुर्थ अंश, ये चतुर्थ अंश अध्याय 2 इसका वो प्रथम अंश था। पहले 233 पृष्ठ पर देखिएगा, पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ, देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। अभी न साधना तो विष्णु की करी और प्रगट हो गया विष्णु रूप धारण करके युग काल। तब आदि अंत शून्य अशेष जगत पति पालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है, उसके विषय में यह बात सुनिए। राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। युगकाल ने बोला, तुम उस ससाद के पुत्र पुरंजय ने लड़ाई के लिए तैयार कर दो, मैं उसमें भूत की तरह प्रवेश कर जाऊंगा और फिर उन्हें मार दूंगा। आगे देखो एक और प्रमाण दिखाते हैं, ये तीसरा अध्याय और वही चतुर्थ अंश श्री विष्णु पुराण पृष्ठ 242 पे। पूर्व काल में रसातल में मौने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निद्रा के अंत में जागे हुए उन जलाशय भगवान सर्वदेव देवेश्वर को प्रणाम करके उनसे नागगण ने कहा, यानी वो विष्णु काल आकर प्रकट हो गया विष्णु रूप में नागों के पास, भगवान ये वो नंगे अंडार वो नागे नहीं, इनका नाग गोत्र के थे वह गण, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, काल ने योनासव के पुत्र मानधाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं भूत की तरह बढ़कर उसमें मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। अपुण आत्माओं ऐसे इस ये कहता है ना काल गीता में 4th अध्याय के 5वें और 9 श्लोक में कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। अब जन्म तो सुबह बता दिए थे कैसे दिव्य हैं, कर्म इसके नौ दिव्य हैं, ये सामने नहीं आता। श्री कृष्ण में प्रवेश करके और कितना जुल्म करवा दिया, यो इसका दिव्य कर्म है। जैसे इस पुरंजय के शरीर में प्रवेश करके और असुरों का नाश कर दिया भूत की तरह, ऐसे ही इस नागों के हित में प्रवेश करके भूत की तरह और उन नागों का नाश कर दिया। तो ऐसे ये गुप्त रूप में सारे काल ये काल ही जुल्म करवा रहा है। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और उसके बाद कभी अपने आप को काल नहीं कहा। जब काल उसके शरीर से निकल गया फिर कृष्ण का कृष्ण। फिर बाद में श्री कृष्ण से पूछा था अर्जुन ने कि भगवान वह गीता का ज्ञान मुझे फिर सुना दे। श्री कृष्ण बोला भाई अब वो मेरा तो याद नहीं, और तूने क्यों नहीं याद रखा, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है। अब दिखाता हूं महाभारत के अंदर, अपनात्माओं हम अपने सदग्रंथों को भी नहीं समझ सके, ये सदग्रंथ ही बहुत निर्णय दे देते हैं, उसके बाद भगवान की महिमा हमारे समझ में आ जाती है। देखिएगा संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड और प्रकाशक तथा संशोधक जयदयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर से। ये तो अंडरस्टूड है इनका, यो प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 667 पृष्ठ पे ये 667 पृष्ठ पे ये अश्वमेघ मेधिक पर्व। जन्मे जय ने पूछा ब्रह्मन शत्रुओं का नाश हो जाने पर, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उसमें उनमें क्या बातचीत हुई। वैशंपायन जी ने कहा राजन श्री कृष्ण सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सर्वजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडु नंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीक सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन जब युद्ध का समय अवसर उपस्थित था उसमें मुझे आपके महात्म का और ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन होया था, किंतु केशव आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान उपदेश किया था वह गीता सुनाई थी वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बार बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जलती द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। गीता का ज्ञान ईब सुना जब तबरी गिगीबंदरी थी डर रहा था यो। वैश्वयान जी कहते हैं अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले अर्जुन उसमें मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा पूरा समन होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का तू दुहराना देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। देखो रे भक्तो कमाल की बात है। अब क्या है कि जैसे भूत यहां हम देखते हैं आप भी देखोगे, कुछ ऐसे प्रेत आते हैं, किसी की आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं और वो पता नहीं क्या क्या बात करता, मैं ऐसे था, मैंने ऐसे कर दिया, मैं वहां जन्मा था, मैं ऐसे करता था। और वो जब निकल जाता है उसके शरीर से, बॉडी से, तो उस व्यक्ति को जिसमें वो भूत प्रेत बड़ा हुआ था, प्रवेश था, उसको और ही बताते हैं कि तू न्यो बोल रहा था, तू ऐसे बोल रहा था, तेने ऐसे ऐसे कहा, उसने नहीं पता क्या कहा वो, औरों के सुनने के बाद फिर उसको थोड़ा बहुत आभास होता है कि मैंने कुछ कहा था, पर याद ना रहता उसका कुछ भी। तो ऐसे श्री कृष्ण को औरों ने बताया कि आपने गीता ऐसा ऐसा ज्ञान दिया था युद्ध में, और वो दे गया काल, फिर निकल गया। अब श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन कह रहा है कि भगवान वो गीता का उपदेश मुझे जो का तो सुना रहा, फिर सुना दीजिए, मैं भूल गया। और कृष्ण जी कह रहे हैं तेरी बुद्धि अच्छी नहीं, तू श्रद्धाहीन है, तू अच्छा व्यक्ति नहीं है, तूने क्यों नहीं याद रखा। और फिर कहता है मेरे तो याद नहीं मैंने क्या कहा था, मैं जो का तो मैं नहीं सुना सकता। उसने तो डांट मारा कि तूने याद क्यों नहीं रखा, और बोलने वाला वक्ता ने कहा मेरे याद नहीं। अब इस दास ने सत्संग किया आज ये 3 दिन का, आप 10 साल पाछे पूछ लियो जी वो विषय सुनाना आपने उस दिन सत्संग किया था, ये टॉपिक थे, 2 मिनट में सुना दूंगा। आज जो पहली बार ये सत्संग सुन रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा 40% याद रहेगा, 60% याद नहीं रहेगा एक बार सुन करने से। और मैं ये कहूं मुझे तो याद नहीं, तूने याद क्यों नहीं रखा, तो ये बात विपरीत है। इसे सिद्ध है कि श्री कृष्ण जी में वो काल प्रेत पिवत बोल के ब्रह्म ये छर पुरुष सारा अनर्थ करवा के निकल गया और ये सारा जुल्म करवा गया। और ज्ञान परमात्मा के आदेश से, परमेश्वर कबीर जी के रिमोट से इसने अपने आप को काल भी बोल दिया, इसके समझ में ना एक बन्ने भी काल कह दिया, अपने आप को सच्ची बता दी। और ये भी कल वाजिया कि वो परमात्मा कोई और है ना, तो यू तो ऐसा कसूता काम कर रहा था, किसी की बुद्धि नहीं खुलन देता। परमेश्वर ने अपने पाने के लिए, अपने बच्चों को, अपने आप को अपनी शरण में लेने के लिए, अपनी पहचान बताने के लिए पुण्यात्माओं पूरा प्रबंध कर रखे है और इन्हीं से करवा रखा है। ये पुराण लिखे हुए हैं जिनके विषय में आज तक नहीं बता सके, ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता कौन हरि में स्पष्ट लिखे हुए हैं। अब परमात्मा कहा करते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मे, उनको फेरा मोतिया बंदरे। बोलो सतगुरुदेव जय हो।